ओम शांति। हमारा सौभाग्य था कि मैं जब पहले दिन सेंटर पर पहुंची, उस दिन ही मम्मा का संडे होने के कारण पब्लिक प्रोग्राम था। उन दिनों में मम्मा 9 मास मुंबई रही, मेरे आने के बाद 7 मास। मम्मा बहुत ममतामयी थी और छोटी आयु में उनको मम्मा का टाइटल मिला, माँ का पार्ट बजाया, कुमारी होते माँ का पार्ट बजाया। इतने तक कि मम्मा की माँ भी उसको मम्मा कहती थी, ब्रह्मा बाबा भी माँ कहता था मम्मा। और बड़े बड़े भाई भी मम्मा की गोद में जाते थे और माँ का अनुभव करते थे। मम्मा बहुत स्वीट थी, रॉयल थी और मुरली से उसका विशेष प्यार था। मुरली सुनती थी, धारण करती थी और जब मम्मा बाबा दोनों मधुबन में होते थे, बाबा मुरली चलाते थे और मम्मा 1:10 बाबा को देखती रहती थी, क्योंकि 2 गद्दी होती थी। मम्मा अभी भी है हिस्ट्री हॉल में, तो मम्मा कुछ 5-10 मिनट पहले आकर थोड़ा क्लास कराती थी, बाबा आते थे फौरन बंद कर दिया। और बाबा जब मुरली चलाते थे ऐसे देखते रहते थे। मम्मा का वहां रहने का ज्यादा इसलिए हुआ कि लक्ष्मी नारायण का चित्र 63 में बनाना शुरू किया। मम्मा ध्यान में नहीं जाती थी, वहाँ शील दादी ध्यान में जाती थी। पर ये बात होती है, जो आर्टिस्ट है वो ध्यान में नहीं जाता है, जो ध्यान में जाते हैं वो आर्टिस्ट नहीं है। तो शील दादी और मम्मा डायरेक्शन देते रहते थे, कैसा चेहरा हो, कैसी साड़ी का कलर हो, कौन सा ब्लाउज का कलर हो, लक्ष्मी को ना को कितने गहने होने चाहिए आदि। और फिर जब 64 में प्रदर्शनियां शुरू हुई, उस समय तो कार्टून होते थे, वर्ल्ड रिन्यूअल एग्जीबिशन होता था, तो उसमें भी मम्मा जाकर उसका उद्घाटन किया। ब्राह्मण की रीति से पब्लिक में मम्मा बाबा कभी नहीं जाते थे और उनका जो मुरली का प्यार था, क्योंकि मम्मा को कैंसर होने के नाते ट्रीटमेंट के लिए बम्बई में रहना पड़ता था, तो क्या करती थी कि ब्रह्मा बाबा जो मुरली चलाते थे वो ईशु दादी शॉर्ट हैंड में लिखती थी और वो फर्स्ट पोस्ट से बम्बई आती थी, तो उन दिनों में पांडव भवन से शाम को जो बम्बई की ट्रेन जाती थी उसमें टाइम पर मुरली पोस्ट की जाती थी, दूसरे दिन सवेरे मम्मा के हाथ में आ जाती थी। तो पहले वो पढ़ती थी, फिर लिथु हुई मुरली आती थी, उन दिनों में प्रिंटिंग नहीं होती थी, तो लिथु हो के हफ्ते 10 दिन के बाद बम्बई मुरली पहुंचती थी, वो पढ़ती थी। और उन दिनों में फोर ग्रंडिंग टेप रिकॉर्डर था, तो बाबा की जो मुरली थी वो टेप करके बम्बई भेजते थे, वो सुनते थे। तो मुरली की दीवानी थी और धारणा करके मुरली ऐसे सुनाते थे जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते थे मामा के मुरली। और जब मम्मी थे बम्बई में तो क्या होता था कि सिर्फ सवेरे क्लास होता था, मम्मा बाबा कभी भी आते थे मॉर्निंग में क्लास होता था, क्योंकि ब्राह्मण दूर दूर से आते थे, सहायन घाटकोपर मुलन बोरीवली कांदेवली इतने दूर दूर से पहुंचते थे, तो दिन में तो एक ही बार जा सकते थे। तो मम्मा सवेरे अपना क्लास कराती थी और धारणा युक्त बात। तो दो पॉइंट मम्मा के मुझे बहुत याद है। मम्मा कहती थी कि देखो, यदि किसी को उल्टी का ख्याल होता है घर में होगा तो क्या करेगा, फौरन बाथरूम में दौड़ेगा, वॉश बेसिन में या फ्लश कर देगा। यदि रास्ते में होगा तो क्या करेगा, थोड़ा साइड पर जाकर उल्टी करेगा, क्योंकि रास्ते के बीच में उल्टी करे तो आने जाने वालों को भी थोड़ा नाक बंद करना पड़ता है। तो बाबा मामा कहते थे देखो, आपको कोई उल्टी करनी है अर्थात किसी की बात अच्छी नहीं है, कंप्लेन करनी है, तो सीनियर से करो बात, इधर उधर नहीं करो कि ये ऐसा है, यो ऐसा है, उसने ये किया वो किया आदि। क्यों कि जिसको आप बात करेंगे उसका भी उसके लिए ओपिनियन खराब हो जाएगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु सीनियर को बताने से वो सीनियर सावधानी देंगे। जैसे मक्खी बैठेंगे उल्टी पर तो क्या होगा, वो मक्खी फिर किसी के खाने पर बैठेंगे, किसी का खाना जो खाने वाला है वो भी बीमार हो जाएगा। तो आप ऐसे उल्टी सीटी बातें करेंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। दूसरा कहती थी कि देखो, सब अपना घर का कचरा बाहर फेंकते हैं और इंडिया में तो उन दिनों में क्या करते थे, डस्टबिन वगैरह का इतना रसम नहीं था ना 60s में, तो क्या करेंगे, रास्ते पे कचरा डाल देंगे, तो पड़ोसी वाला वो कचरा घर में नहीं लाएंगा, अपने आंगन में नहीं लाएंगा। इसी रीत से हर एक अपनी बुराइयां निकालना चाहता है। अभी उसकी बुराई आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि उसका किसी बुराई अपने में ला लेते हो और आप भी बुरे बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर धारणा की बात करती थी। दूसरा, मम्मा की शक्ति, आपको मालूम है कि जब कोर्ट केस चला, मम्मा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मम्मा को कोर्ट केस में जाना पड़ा गवाही देने के लिए। तो कोर्ट में क्या करते हैं, पहले प्रॉमिस करना होता है कि मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं, ट्रुथ, होल ट्रुथ एंड नथिंग बट ट्रुथ। भगवान को अपने सामने समझकर मैं सच्ची बोलूँगा। मामा कहे, मैं तो भगवान को सामने नहीं देखती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ ऐसे। तो वो अपने विचारों पर अड़ी रही, तो जज ने छोड़ दिया। तो वो मम्मा कभी डरती नहीं थी किसी भी बात में, क्योंकि सत्यता थी, तो सत्य बताने में क्या डर। और मम्मा की दूसरी विशेषता थी कि मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, और उसका उठने का टाइम 2:30 बजे। बम्बई में थी, एक रात को मिनिस्टर को मिलते मिलते 12 बज गया, फिर भी 2:30 बजे उठ गई। तो रमेश भाई कहे, मम्मा आप इतनी देरी से सोई और 2:30 बजे उठ गई। मम्मा कहे, यदि वो मिनिस्टर को मिलने में रात को देरी तक जाग सकती हूँ, तो मेरी पीयू की अपॉइंटमेंट 2:30 बजे है, मैं कैसे मिस करूँगी। दूसरी मम्मा की ये विशेषता थी कि जो भी बाबा कहते थे, जी हजूर जी हाजिर, अभी करके दिखाती थी। यज्ञ में शुरू शुरू में साक्षात्कार होता था, और जो साक्षात्कार करती थी संदेशी, वो फिर बाबा कहते थे प्रैक्टिकल में ड्रामा करके दिखाओ, सबको मालूम पड़े क्या होता है, जैसे पाप कर्म की क्या सजा होती है। तो वो भी बताते थे, और कैसे पहाड़ से गिरते हैं लोग आदि आदि। और एक बारी लक्ष्मी नारायण के मैरिज का साक्षात्कार हुआ, रात को 9 बजे संदेशी कहती है, कल सवेरे 10 बजे ये लक्ष्मी नारायण का मैरिज का पार्ट प्ले करना है, बाबा ने मम्मा को बुलाया कि मम्मा 9 बजे तक हमें लक्ष्मी नारायण के ड्रेस और अलंकार तैयार कर दो। मम्मा ने कहा जी बाबा। उन्होंने बहनों को तैयार किया, एक ग्रुप कपड़े सिलाई कराया, एक ग्रुप ने अलंकार तैयार किए और मम्मा खुद जाकर साथ में बैठकर काम पूरा किया। और मम्मा बाबा बहुत निरहंकारी थे, कभी भी स्थूल कार्य में भी हाथ बटाती थी। एक बार सब अनाज साफ कर रहे थे, गेहूं साफ कर रहे थे, मम्मा भी बैठकर गेहूं साफ करती थी। किसी ने कहा मम्मा आप क्यों बैठ गई है? तो कहा क्या है, कर्मेंद्रियों से मैं ये कार्य करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ। तो मम्मा बाबा साथ में काम करते थे तो सबको उमंग भी आता था और सभी बैठ जाते थे, काम जल्दी पूरा हो जाता था। फिर एक बार मधुबन पांडव भवन में बाबा हमेशा जो ग्रुप आता था उस ग्रुप को गोसुन कमसुन टोली दे रहे थे। टोली देते देते बाबा को ख्याल आया कि इन्हों को गरम गरम हलवा खिलाना है। तो बाबा ने फौरन मम्मा को बुलाया कि भाई हलवा तैयार करके लाओ। बाजू में मनोहर दादी खड़ी थी, वो कहते ये लोग जा रहे हैं और बाबा कहता है गरम गरम हलवा खिलाओ, पर मम्मा ने सवाल नहीं पूछा। 10 मिनट में हलवा तो तैयार हो गया। बाबा ने एक भाई को साइकिल पर बस स्टॉप पर भेजा। उन दिनों में हम लोग हैं पांडव भवन से बस स्टॉप तक पैदल जाते थे और हमारा सामान बैलगाड़ी में पहले पहुंच जाता था, परंतु सामान चढ़ाते समय हम लोगों को हाजिर रहना पड़ता था। तो जब तक ये साइकिल पर हलवा लेकर पहुंचा तब तक तो बस निकली नहीं थी, उनको गरम गरम हलवा मिल गया। तो मम्मा की ये सब विशेषता थी कि वो बहुत रॉयल थी। दूसरी दादियां तो अपने को मामा की बच्चियां समझकर कभी भी बाबा के पास दौड़ जाती थी और कभी बाबा से ये रिक्वेस्ट भी करती थी, बाबा हम आज आपके मकान में आवे रहने आज कई रात, क्योंकि उन दिनों में माताएं अलग रहती थी, भाई लोग अलग रहते थे और बाबा परिवार के साथ होम निवास में रहते थे, तो वो चली जाती थी। पर मम्मा बाबा के बुलाए बगैर कभी बाबा के पास नहीं जाती थी। और मम्मा को मालूम था वो लक्ष्मी बनेंगे, परंतु कभी वो नशा नहीं था, अपना पुरुषार्थ तेज करते रही। और मम्मा वो 64 में कानपुर में थी और देखा गया कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो डॉक्टरों ने राय दी कि मम्मा बम्बई जाए, टाटा हॉस्पिटल में चेकिंग कराए, क्योंकि उन दिनों में बम्बई के टाटा हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थे। तो डायग्नोस हो गया कि कैंसर है, परंतु उन दिनों में कोई ट्रीटमेंट इतनी एडवांस नहीं थी, रेडियोथेरेपी थी। परंतु जब भी हॉस्पिटल में रेडिएशन लेने के लिए जाते थे, मम्मा इतनी शांत और गंभीर होती थी कि हॉस्पिटल की नर्सिस वगैरह जिनों को मालूम था कि ये ब्रह्मा कुमारी की हेड है, आती थी दर्शन करने और सरप्राइज होता था कि मम्मा कभी चूचा नहीं करती थी, ऐसा ही हर्षित चेहरा हमेशा। और बम्बई में रहकर रेडिएशन लेते लेते भी बीच बीच में जब तबीयत ठीक होती थी जरूर मॉर्निंग क्लास कराने आती थी, पुणे भी जाती थी, क्योंकि बम्बई पुणे उन दिनों में 4 घंटे का रास्ता था, तो पुणे भी बीच बीच में जाती थी। तो 4 जून के पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये मम्मा अभी हम उसका ज्यादा इलाज नहीं करते हैं, कैंसर स्प्रेड हो गया है, फेफड़े के आसपास पानी भर गया है, पेट में पानी भर गया है। तो फिर कहा कि उसको जहाँ भी शरीर छोड़ना है आप ले जा सकते हैं। तो 4 जून को मम्मा बम्बई छोड़ के वहाँ आई यहाँ मधुबन में, पर जाने के पहले नेचुरली ये सब ब्राह्मणों को छुट्टी दी। तो ब्राह्मण एक तरफ से आते थे, दूसरी तरफ से जाते थे। जब सामने से आते थे मम्मा ठीक सांस लेती थी, जब पीछे जाते थे तो मम्मा गहरा सांस लेती थी। मतलब किसी को ये ख्याल ना हो कि मम्मा बीमार है, नेचुरली है बीमार है मम्मा, तो बच्चों को तो दुख होगा। और बाबा ने भी किसी को बताया नहीं कि मम्मा टर्मिनल स्टेज में है। जब 24 जून में शरीर छोड़ा, गुरुवार था, तो उन दिनों में भोग लगता था दिन में 12 बजे। तो मम्मा ने सबको भोग दिया, मतलब मम्मा के कमरे में आते थे। अभी जो दादी जी की मीटिंग रूम है, उस समय मम्मा की बेडरूम थी, और लोग ब्रह्मा बाबा से अमृत पीते थे और मम्मा से भोग लेते थे। भोग में उस दिन अंगूर थी। और मम्मा ने फिर 4 बजे शरीर छोड़ा। उस दिन सवेरे लखनऊ के दादा राम और सावित्री जो मुख्य वहाँ के थे, वो 24 जून सवेरे वहाँ से निकले। मालूम ही नहीं था कि मम्मा इतनी बीमार है। लखनऊ पहुंचे और मालूम पड़ा कि मम्मा ने तो शरीर छोड़ा, तो वो दूसरी ट्रेन में फिर वापस आ गए उसी। तो क्या है कि जो भी वहाँ लास्ट दिन तक थे, किसी को समझ में नहीं था कि ये मम्मा जा रही है। सिर्फ हम मुंबई वालों के, वो भी खास चार पांच लोगों को ही मालूम था, जो दादियाँ थी और डॉक्टर मैं और अनिला बहन थे और रमेश भाई का परिवार था, बस उन्हों को मालूम था कि मम्मा टर्मिनल स्टेज में है। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, सबको मालूम पड़ा, तो नेचुरली सब मधुबन आ गए अंतिम संस्कार के लिए। और मनोहर दादी आई बाबा को मिलने, तो कहती है बाबा मम्मा चली गई। तो कहते क्या परेशानी करने आई हो क्या? बाबा कहता तो समझो मम्मा ने ज्ञान इतना अच्छी रीति धारण किया और सदैव योगयुक्त निरंकारी ऐसी स्टेज में रहती थी, जो हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल बन गई। तो मुंबई से भी जब मालूम पड़ा कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, पहली ट्रेन लेके वो लोग सब पहुंच गए और स्मशान में सीधा जाना पड़ा उन्हों को। उन दिनों में हम लोग इतना फ्लाइट नहीं लेते थे, आजकल तो फ्लाइट लेकर शहर जल्दी पहुंच जाते हैं, उन दिनों में तो सब ट्रेन में मुसाफरी करते थे। पहुंच गए और मम्मा के लिए फिर रमेश भाई ने गीत गाया, हो सके तो लौट के आना आदि। तो समझो रमेश भाई और उषा बहन के पास मम्मा काफी रही। और मैं जब 7 दिन कोर्स पूरा किया, उषा ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया मम्मा से, तो मम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा, सब ठीक ठाक? मैंने कहा मेरी टीचर जा रही है, क्योंकि कुंज दादी आई थी मुझे कोर्स कराने, वो जा रही थी। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, निर्मल शांता तुमको देखेंगे। तो उन दिनों में निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी सेंटर पर रहते थे, और शील दादी और रतन मोहिनी दादी अपने अपने फ्लैट में रहते थे। फिर 3-4 मास के बाद उषा ने अपने घर में मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया। तो जब मैं गई तो भोजन के पहले एक भाई था, उसने अपना अनुभव सुनाया कि वो बाल भवन में कानपुर में रहता था, नौकरी करता था, और जो नौकरी में पे मिलती थी वो यज्ञ में देता था। तो उस समय तक मुझे फिर भी पक्का निश्चय नहीं था, मैं कहा शिव बाबा भगवान है वो मानती हूँ, परंतु ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं ये कैसे माने। और 5000 वर्ष का चक्कर हूबहू रिपीट होता है, कैसे माने। तो भाई ने कुछ समझाया, उषा ने हमें सारे यज्ञ की हिस्ट्री सुनाई कि कैसे कैसे मैजिकल एक्सपीरियंस होते थे। फिर मेरा निश्चय हो गया, पर उस समय अभी निश्चय पूरा भी नहीं था। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मेरी दिल नहीं है मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मेरी दिल है कि मैं इसी सेवा में लग जाऊं। मम्मा कहे, तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो तब पूछना। मतलब बड़ा फैसला मम्मा खुद नहीं करती थी, ब्रह्मा बाबा के पास छोड़ देती थी। तो जब ब्रह्मा बाबा से पूछा, उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम तो डबल डॉक्टर हो, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इस रीत से मम्मा बाबा से हमें बहुत पालना मिली। और मम्मा ने एक अपना यादगार छोटी उम्र में ऐसा अपना नंबर वन ले लिया। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। कुछ प्रश्न है दीदी। सभी दादियों को बाबा की पालना मिली, सभी बहुत सारी दादियां थी, और सभी के दिल में एक बाप दूसरा ना कोई, यही भावना थी। फिर भी ऐसी कौन सी धारणा मम्मा के अंदर थी, वो नंबर वन पहुंच गई, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया मम्मा ने।
मम्मा को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो ज्ञान सुनकर धारण करके क्लैरिटी से वो क्लासेस कराती थी। और हर एक बात में नंबर वन, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। तो नेचुरली है कि भल दादी प्रकाश मणि, दादी शांता मणि, मम्मा की माता, मौसी, सब उनसे पहले ज्ञान में आए थे। परंतु मम्मा की विशेषताएं देखकर ब्रह्मा बाबा ने उनको यज्ञ माता बनाया।
दीदी, लास्ट में जो आपने बताया था कर्म भोग की बात, कर्म भोग का पेपर अंत तक दादी अपनी मम्मा के सामने आया, तो कैसे उन्होंने पास कर दिया उस पेपर को, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी होती है तो लोगों को कितना तकलीफ होती, उसी के ऊपर भी अटेंशन, लेकिन उनके चेहरे पर रिंचक मात्र भी उसका प्रभाव नहीं होता था। तो ऐसी कौन सी बात मम्मा के अंदर थी।
शरीरी बनकर बाबा की याद में रहकर वो चलती रही, जिस कारण उसके चेहरे पर दुख की, चिंता की जरा भी लहर नहीं थी। हमने देखा सब दादियां, उनको ये था अशरीर रहने का अभ्यास पक्का। दादी प्रकाश मणि को भी हमने देखा, लास्ट दिन तक चेहरा अर्शित, कभी भी कोई भी इंजेक्शन लगाते, इंट्रावीनस देते थे, कभी छूछा नहीं किया। तो हिसाब किताब तो जन्म जन्मांतर के अभी चुक तो करने हैं, क्योंकि क्या पूछते हैं कि मम्मा इतनी योगन थी और क्यों कैंसर हुआ, पर पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी तो चुक तो करना पड़ता है।
दीदी, आपको बाबा की भी पालना मिली, मम्मा की भी पालना मिली, तो भी हम सभी भाग्यशाली है कि जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना दी ली है वो हम सबको पालना दे रहे हैं। मिल रहे हैं ना आप सबको पालना? मम्मा की कौन सी ऐसी धारणा थी या कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप प्रभावित हुई और बाबा की सेवा में लग गए?
मैं समझती हूँ मेरा लक्ष्य बचपन से था कि मुझे जनता की सेवा करनी है, इसलिए मेडिकल स्टडी करती हूँ। क्योंकि 17 आयु में हमारे लौकिक माँ बाप ने लड़का ढूंढना शुरू किया, मैंने कहा देखो मेडिकल स्टडी हार्ड होती है, सगाई करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, क्या फायदा? फिर घर वाले कहेंगे पहला तुम्हारा कर्तव्य है बच्चों को संभालना, सासू कहेंगी व्यवहार में तुम जाओ, अभी हमने तो सब कुछ कर लिया। मैंने कहा फिर शादी करना और पढ़ाई करना दोनों नहीं चलता है, इसलिए 17 वर्ष की उम्र में ही मैंने कहा जब तक मैं पढ़ूं तब तक शादी नहीं कर, मतलब ब्रह्मचर्य का हमको पहले से ही शौक था। और सेवा का शौक था तो मैं कहूँ कि जब मैंने ज्ञान में ये देखा कि ये दोनों मैं कर सकती हूँ, अभी मुझे भगवान का आधार मिल गया तो लौकिक पति के आधार की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहती हूँ कि मैं मम्मा बाबा से प्रभावित होकर अर्पित हुई, ज्ञान योग से प्रभावित होकर मैं समर्पित हुई।
थैंक यू दीदी।
8:15
हो गए दीदी, लास्ट में एक प्रश्न। मम्मा कुमारी थी फिर भी यज्ञ की पालना माँ बन करके ऐसे कैसे संभव हो सकता है दीदी, जब कुमारी है और वो सब लोग उनकी माँ भी उनको मम्मा कहने लगी, बाबा भी उनको मम्मा, ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसी क्या बात थी?
यही ईश्वरीय ज्ञान के कमाल है। माताओं को कहा आप अदर कुमारियों और कुमारियों का कहा आप हो जगत माँ, मतलब सब पाठ पर जाना पड़ता है। भाइयों को भी सेवा करनी है। उन दिनों में कहते थे ना भाई लोग भी चंद्रहास भाई बकेट लेके पानी लेके जाता था, आवाज थोड़ा उनका माता जैसा था, ये कह के ये सच्ची ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है, सबको क्या से क्या बना देती है। तो ये है ज्ञान योग की कमाल, मम्मा को पाठ मिला और मम्मा ने बेस्ट रीति से बजाया और बाबा की परख शक्ति थी। मेन बात तो ये है कि ब्रह्मा बाबा की ऐसी परख शक्ति थी जो समझा कि ये कार्य मम्मा कर सकते।
थैंक यू दीदी, देखो कितना शांति से सब बैठे एक एक बात सुन रहे, मम्मा की बात सुनने की सबके अंदर कितनी उत्सुकता है, और वैसे भी ये मम्मा का मास है। दीदी सबसे पहले तो इन सबको धन्यवाद, क्योंकि ये भट्टी की विशेषता है, एकदम एक्यूरेट टाइम पे सारे टीचर बहने पूरा सोपा भरा रहता है, इसलिए खुद के लिए थोड़ा ताली बजा दो। और दूसरा दीदी, कल अव्यक्त मिलन है, तो सबको ऐसा वरदान दो, उनका कल का अव्यक्त मिलन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव के साथ पूरा हो, तो ऐसा कुछ वरदान दो ताकि आज अमृत वेले से सब अव्यक्त मिलन में मगन हो जाए।
देखो जब अव्यक्त मिलन का दिन होता था, जब साकार में गुलजार दादी के टन में बाबा आते थे, लोग कितना प्रेम से आते थे और सारा दिन अव्यक्त रहते थे, और शाम को हॉल खुलने के पहले लाइन लगी रहती थी, तो इसलिए इतना उमंग उत्साह होता था कि हम आगे जाकर बैठे। तो कल भी जब अव्यक्त कल रखा है तो आप लोग, तो कल भी जब आप आओ ना 5 बजे से, ये समझो हम अव्यक्त रूप में बैठे और अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेकर शक्ति लेकर वरदान लेकर अपनी कमियां बाबा के पास छोड़ के जाएं, ये एम रखना है।
थैंक यू दीदी, अभी